ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हाथियों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिक डॉ विवाश पांडव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य वन संरक्षक किशोर कुमार बिसेन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
डॉक्टर विवाश पांडव और के बिसेन जी, कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
डॉक्टर विवाश, आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को वन्य जीवों की रक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों का अवसर करार दिया है और उन्होंने उन्हें संरक्षित करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। तो हाथियों के संदर्भ में इस कथन के क्या मायने हैं और हमारे देश के लिए ये क्यों आवश्यक है?
ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हाथी जो है हिंदुस्तान का हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज एनिमल है। जैसे टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसी तरह से हाथी हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और हाथियों का जो जीवन शैली है जंगल में, बहुत अधिक मात्रा से आदमियों से बहुत मिलता जुलता रहता है। और जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक फैमिली यूनिट रहता है छोटा सा, और दो तीन फैमिली यूनिट मिलके एक बॉन्ड ग्रुप हमारा रहता है, फिर दो तीन बॉन्ड ग्रुप मिलके एक क्लान बनता है, उसी तरह से 6 से 8 हाथी जो है जंगल में एक सोशल यूनिट में, एक फैमिली यूनिट में रहते हैं। आपस में 20-25 हाथी मिलके एक बॉन्ड ग्रुप बनाते हैं और 50-60 हाथी मिलके एक क्लान बनाते हैं। तो इसी तरह से हाथी का जो जीवन शैली है जंगल में आदमियों से काफी मिलता जुलता है। और दूसरी चीज जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। जानवरों में बहुत ज्यादा, जितने सारे जानवर हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल हाथियों को माना जाता है। तो इस प्रकरण में हाथियों को बचाना और जंगल को बचाना जो है बहुत ही मायने रखता है।
अगर इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जंगली जानवर हमारे लिए बेहद अहम माने जाते हैं, तो आज के समय में हाथियों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता होगी जिससे कि वे सुरक्षित भी रहें और मानवों पर उसका नकारात्मक असर न पड़े?
3 प्राइमरी चीज जो है हाथियों को बचाने के लिए हमें चाहिए। हाथी जंगल में जो विचरण करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि 500 स्क्वायर किलोमीटर, 600 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल बचा के 100-150 हाथी को बचा लेंगे तो हम गलत है। हाथियों को बचाने के लिए हमें हजारों स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जो है उनके लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक है उनका वासस्थल जो है बड़ा होना चाहिए, छोटे एरिया में हम हाथी को बचा नहीं सकते। दूसरा चीज है, आज की दिन हिंदुस्तान के जंगलों में हजारों मवेशियां चुगते हैं जाके। मवेशी चुगने की वजह से जो है हाथियों का खाना जो जंगल में है वो बहुत कम होता है। तो उनको जो है खाली बड़ा एरिया नहीं, उनको प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एटमोस्फेयर है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। और हमें एक साथ जो है 10,000-15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल मिल नहीं सकता, लेकिन 2,000-1,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है उसको आपस में जुड़ना है। जो कॉरिडोर बोलते हैं, कॉरिडोर के थ्रू बड़े बड़े जंगल जो पैचेस है उसको जोड़ना है ताकि हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल को इसी कॉरिडोर या गलियारों के थ्रू जा सके। तो ये जो 3 चीज है, उनका प्राकृतिक वासस्थल को संरक्षण करना, गाय मवेशी जो चुगते हैं जंगल में उनको कंट्रोल करना, और गलियारों को सुरक्षा देना ताकि हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सके, ये 3 चीज हमें आज की डेट पे चाहिए।
के बिसेन जी, भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहे हैं और ये खुशी की बात है कि हमारे देश में उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत में आज हाथियों की क्या स्थिति है, इस पर आपके क्या विचार हैं?
जैसे पांडव साहब ने बोला कि उनकी जो नीड है उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, मानव तंत्र नहीं कर पा रहा है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये तभी पूरी हो सकती है जबकि एक समग्र जागरूकता है, और समग्र जागरूकता जैसे ही आएगी तो हाथी हमारा जीवन का अभिन्न अंग है, उसका संरक्षण संवर्धन निश्चित ही होगा।
डॉक्टर विवाश, भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए टाइगर संरक्षण की तर्ज पर देश में 34 हाथी रिजर्व केंद्र बनाए हैं, तो हाथी के संरक्षण के लिए केंद्र समय समय पर धन भी मुहैया कराता है। इन उपायों से हाथियों के सामने आने वाले खतरों को रोकने और हाथियों की आबादी बढ़ाने में क्या भूमिका हो सकती है?
सरकार की प्रयास से ही हिंदुस्तान में आज की डेट पे सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा हाथी, एशियाटिक एलिफेंट जो है वो हमारी यहाँ है। दैट इज डिस्पाइट 1.4 बिलियन पीपल इन द कंट्री। ये केवल सरकार की प्रयास, सरकार की इन्वेस्टमेंट, उसके वजह से हुआ है। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी होना चाहिए, जो वासस्थली है हाथी का उसको सुरक्षा देना और उसको जो यथास्थिति बरकरार रखना और उसको इम्प्रूव करना, ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। और क्योंकि हाथियों की संख्या बढ़ रहा है हिंदुस्तान में और आबादी भी बढ़ रहा है, तो मानव हाथी संघर्ष जो है बहुत सारे राज्यों में बड़ा अलार्मिंग प्रोपोर्शन रूप ले रखा है अभी। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, केरल है, वहां पे मानव और हाथी संघर्ष काफी ज्यादा है। तो वहां पे टारगेटेड एफर्ट होना चाहिए ये संघर्ष को कम करने में। और कुछ कुछ जगह में हाथी का पॉपुलेशन अबंडेंस इतना ज्यादा है, हमें उस पॉपुलेशन को मैनेज भी करना चाहिए। जो आबादी स्थल है उसमें हाथियों का खुलेआम घूमना उसको रोकना चाहिए और हाथियों को अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रहने के लिए प्रबंध करना चाहिए।
के बिसेन जी, आपके अनुसार मानव और हाथियों के बीच जो टकराव के मामले सामने आते हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है या फिर उनमें कमी किस तरह से लाई जा सकती है?
जैसे भारत सरकार इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा संवेदनशील है, उसका हमेशा प्रयास रहता है कि इस प्रकार के जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है उनको सुरक्षा करना अब स्टेट का डोमेन हो जाता है कि उसको लागू करना। हाथी वाले क्षेत्र में मानव लोगों को नहीं जाना है और प्रयास यह करना चाहिए कि हाथी अपने क्षेत्र में नहीं आए। जनरली मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट बियॉन्ड कंट्रोल होते क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ढोल धमाके फटाके हाथी को देखते ही उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हाथी एक शांतिप्रिय जंतु है।
डॉक्टर पांडव, हाथियों को जंगल का इंजीनियर कहा जाता है और वो अपने हिसाब से जंगल के स्वरूप को बदलते रहते हैं, तो विकास की जो आंधी दुनिया भर में चल रही है उससे मौजूद हाथियों पर संकट तो आया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं खासतौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में?
देखिए, विकास और वन्यजीव संरक्षण जो है साथ साथ हो सकता है और भारत में काफी प्रयास किया गया है। जैसे एक जो है लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप सड़क बोलिए या रेलवे लाइन बोलिए या कैनाल बोलिए या पावर लाइन बोलिए, ये जो है जंगल को जो है हाथी की आवास स्थली जो है उसको फ्रैगमेंट कर देता है। तो इसके लिए जो है सरकार अभी जहां जहां नए सड़कें बन रहे हैं और वो जहां जहां हाथियों की आवास स्थली के अंदर होकर गुजर रहा है वहां पे मिटिगेशन स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जैसे एलिवेटेड रोड, एलिफेंट अंडरपास प्रोवाइड करना, सड़क को ऊपर पिलर के ऊपर सड़क को उठा के लेके जाना। आज की डेट पे जैसे आप देखेंगे 14 किलोमीटर का सड़क बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है देहरादून के लिए, नई दिल्ली और देहरादून के बीच में, जो राजाजी टाइगर रिजर्व को छूते हुए और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के अंदर होते हुए, ऐसे ही काफी सारे जगह में जो है हाथियों को सेफ पैसेज देने के लिए सड़क इसी हिसाब से बनाया जा रहा है जिस तरह से हाथी भी जा सके और ऊपर से गाड़ियां भी जा सके। तो ऐसे जो है बहुत सारे प्रयास किया जा रहा है जो हैबिटेट को डिफ्रैगमेंट करने में या फ्रैगमेंटेशन से बचाए और दोनों जंगली, खाली हाथी नहीं, जंगली जानवर, बाकी सारे जंगली जानवर हाथियों के साथ सुरक्षित रहे।
डॉक्टर पांडव, हाथियों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथी जो होते हैं उनके बेहतर संरक्षण या फिर उनके पालन पोषण के लिए सही जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए?
बहुत ज्यादा है, लोगों के बीच में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मीडिया, चाहे विजुअल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और जो पालतू हाथी है वो एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का मैं मानता हूँ बहुत बड़ा धरोहर है, और वो कला जो शैली है जिस तरह से हाथी को हम रख सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। उसको बचा के रखना, जैसे माहौत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या साउथ इंडिया में है, बहुत आसाम और केरल तमिलनाडु में आप जाएंगे, बहुत ही स्किल्ड मैन पावर है जो हाथियों के साथ बड़े होते हैं, हाथियों को जंगल से पकड़ के उनको कैप्टिव एलिफेंट या एलिफेंट फोर्स में लाते हैं। तो एक बहुत ही रेयर आर्ट है और उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। उन लोगों का ख्याल रखना जो महावत है हमारे आसाम केरल और तमिलनाडु में है, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि ये जो कला है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो सके।
ऐसे में हाथियों को अनुकूल आवास किस तरह से उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे कि वो आराम से रह सके और मानवीय क्षेत्रों में उनको आने की जरूरत ही ना पड़े, इस पर आपके क्या विचार है डॉक्टर पांडव?
इसके लिए आपको जो हमारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एलिफेंट रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर रिजर्व है, उसको जो है डिस्टर्बेंस फ्री करना बहुत जरूरी है। उसमें जो है वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों को सहमति से उनका पुनर्वास किया जाए, गांवों का पुनर्वास किया जाए जंगल में, जंगल का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरीथिंग दैट लुक्स ग्रीन इज नॉट नेसेसरली पैलेटेबल। जो सब चीज हरा दिखता है इसका मतलब नहीं जानवर उस चीज को खाएगा। हमारा जंगल में आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खरपतवार बहुत है जिसको जानवर खा नहीं सकते। उसकी वजह से हाथी जैसे जानवर जो है फोर्स्ड होते हैं जंगल से बाहर आके आबादी में घुसना या खेतों में घुसना। तो इसीलिए जो है हमें जंगल का क्वालिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जंगल में जो आदमियों की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना, हमारे मवेशी जो जंगल में चुगते हैं उसको कम करना बहुत जरूरी है, ताकि हाथी जो है जंगल में सेफ रहे, उनके खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध हो जंगल में। और जहां जहां हमने ये मेजर लिया है वहां पे हाथी और मानव का संघर्ष जो है बहुत कम हुआ है।
केके जी, आप आकाशवाणी के साथ में एक खास प्रोग्राम करते रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना अनुभव आकाशवाणी के अन्य श्रोताओं के साथ में साझा करें, और जो भी बातें इनसे सामने आई हैं उनका हम फायदा किस तरह से उठा सकते हैं, या फिर हाथियों की भलाई के क्या काम और भी किए जा सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
मैं आकाशवाणी के जो प्रोग्राम है उसको इस अवेयरनेस लाने के लिए, जो जनता जो रूरल क्षेत्र में होती, रिमोट एरिया में रहते हैं, वहां के लोगों के पास में टीवी नहीं होता, रेडियो होता है। ऐसे क्षेत्र में हाथी रहते हैं, जंगली हाथी, तो वो रेडियो को ऑथेंटिसिटी को बहुत मानते हैं। उस स्थिति में हमने प्रयोग किया 2016 से, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। उसके प्रोग्राम के साझा करने से ये हुआ कि लोग आपस में, जैसे रिलीज होता था, चार रिले सेंटर थे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, तो इस सेंटर में जैसे रिले होता था सबको पता रहता कि 5 बजे हमारा प्रोग्राम आएगा। 5 बजे इसलिए आएगा क्योंकि हाथी हमेशा इवनिंग टाइम से नाइट में मूवमेंट करता है गांव के इर्द गिर्द में और नहीं करता, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट जिसने भी सुना तो आपस में शेयर कर लेते हैं कि हाथी आज इस क्षेत्र में। उस ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए हमार हाथी हमार गोट प्रोग्राम को महत्व देना चाहिए। आकाशवाणी के लिए फुल फुल जानकारी तो साइंटिफिक बेस के आधार पर, जो रेडियो सैटेलाइट कॉलरिंग से प्राप्त इन्फॉर्मेशन इंडिकेशन आते हैं उससे, न कि हियर से मैनुअल जानकारी, मैं उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता, परंतु साइंटिफिक इनपुट्स के साथ में जोड़े तो ये बहुत फायदेमंद होता है। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान होता है इस क्षेत्र में।
डॉक्टर विवास, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बहुत ही छोटे स्तर पर अगर इस तरह की घटनाओं, खासतौर पर जहां पर मानव और हाथी के बीच में संघर्ष की घटनाएं होती हैं, दोनों तरफ से एफर्ट्स की जरूरत होती, लेकिन हमारी तरफ से एफर्ट्स की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि हम मानव हैं तो हमें प्रयास ज्यादा करने होंगे इन संघर्षों को बचाने का, बहुत छोटे स्तर पर अगर शुरुआत हम करना चाहें तो इसे किस तरह से किया जा सकता है, कैसे जागरूकता लाई जा सकती है?
पहले हाथियों का रोल जो है हमारे इकोसिस्टम में, क्यों हमें हाथी बचाना चाहिए, हाथी बचाना क्यों जरूरी, ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। और जैसे हिंदुस्तान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एनिमल्स हैव देयर राइट्स टू लिव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लोगों को समझाना है। और जो हाथी का जो रोल है इकोसिस्टम में, जो जंगल में जो हाथी रोल प्ले करता है, अगर हम हाथी को जंगल से निकाल देंगे तो हमें क्या नुकसान होने वाला है, ये सब हमें बताना, लोगों को समझाना जरूरी है। और हाथी कैसे, उसका इमोशनल लेवल जो है हाथी का, आदमियों का इमोशनल लेवल की तरह है, एग्जैक्टली सिमिलर वे, हमें ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक लोगों के बीच में जागरूकता नहीं आएगा, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों का मानव हाथी संघर्ष में, जो हम एड्रेस जब तक नहीं करेंगे, तो हाथी को बचाना मुश्किल रहेगा।
यानी कि इस तरह की जो चीजें हैं उनकी शुरुआत काफी बहुत ही अलग तरीके से हमें करनी होगी। हम ये भी समझ सकते हैं कि निगरानी करना यहाँ पर बहुत जरूरी है,
हाथियों को समझना और किस तरह से हाथी और मानव एक साथ रह सकते हैं वो समझाना, वो बहुत जरूरी है लोगों को।
डॉक्टर विवास पांडव और केके बिसेन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे हाथियों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विवास पांडव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य वन संरक्षक किशोर कुमार बिसेन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।